ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का दौरा करेंगी। वे रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगी। उड़ीसा में वे नयागढ़ में भारतीय विश्व बासु शबर समाज के स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल होंगी। सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश कसौटी में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। ये संशोधन 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। अब 2.5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पहले इनके लिए निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार टर्नओवर सीमा भी 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। 25 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयां लघु उद्यम वर्ग में रखी गई हैं। पहले इनके लिए निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए थी। इन उद्यमों के लिए टर्नओवर सीमा 50 करोड़ रुपए से दोगुनी कर 100 करोड़ रुपए की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट भाषण के दौरान इन उद्यमों के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना कर नए वर्गीकरण मानदंडों की घोषणा की थी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आज सदन में दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सदन में कल प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें इस वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और विकास एजेंडे का ब्यौरा होगा। सत्र के दौरान प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी और इन पर निर्णय लिए जाएंगे। प्रस्तावित बजट सदन में बृहस्पतिवार को पारित किया जाएगा। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का आगामी बजट दिल्ली की जनता को समर्पित होगा। मीडिया से बातचीत में श्री सचदेवा ने कहा कि विधानसभा सत्र में प्रस्तुत बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सितंबर 2024 में चंडीगढ़ बम हमले के मामले में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 4 आतंकवादियों को आरोपी बनाया है। अभिकरण ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आरोपियों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और अमरीका स्थित आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पस्सी भी शामिल हैं। आरोप पत्र चंडीगढ़ की एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया है। एनआईए ने कहा है कि 2 आतंकवादी रिंदा और हैप्पी पस्सी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 2 महिला शामिल हैं। जिले के अपर पुलिस अधीक्षक उलंडोर योक ने बताया कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनमें से 6 पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत इन नक्सलियों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। 1982 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। 24 मार्च को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में तपेदिक दिवस का आयोजन होता है। इस वर्ष का विषय है, हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। ये विषय तपेदिक उन्मूलन के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा करने तथा स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दवा प्रतिरोधी टीबी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध होने का अवसर देती है। रूस और यूक्रेन के बीच आंशिक युद्ध विराम पर चर्चा के लिए अमरीका और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के साथ आज सऊदी अरब में वार्ता होगी। ये वार्ता ऊर्जा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने पर केंद्रित होगी। भारत ने इंग्लैंड में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिए हैं। पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 44-41 से हराया। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने भी फाइनल में 34 के मुकाबले 57 अंक से इंग्लैंड को मात दी। वर्ष 2019 में मलेशिया की मेजबानी में आयोजित आरंभिक प्रतियोगिता में भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता था। आईपीएल टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है। इससे पहले कल ने मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।